जय जय जगन्नाथ सचिरानंद त्रिभुवन पुरे जार चरण वंदा वासुदेव घोषे बोले करी जडहार जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ वासुदेव घोष बोले करी जडहार जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ चिरानंद त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदा वासुदेव घोष बोले कोरी जड़हाट जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ सचिर नंदन त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदन श्री जगन्नाथ भगवान का जय जयकार हो जो शची देवी के नंदन यानी पुत्र हैं। सारा त्रिभुवन 14 लोक उनके चरणों में वंदन कर रहे हैं। वही भगवान नीलाचल यानी जगन्नाथपुरी, हाँ नीलाचल यानी कि नील पर्वत नीलाद्री जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी का जो निवास स्थान है, जगन्नाथपुरी का मंदिर, वो नीलाचल पर है। तो नीलाचल में क्या करते हैं भगवान? शंख चक्र और गदा और पद्म धारण करते हैं, क्योंकि वो भगवान है। शंख चक्र गदा और पद्म यानी कमल धारण करते हैं। और वही भगवान जब गौर मंडल यानी नवद्वीप धाम में आते हैं तो नदिया नगर है, यहां पर डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम नदिया है, नदिया नगर में क्या करते हैं? दंड और कमंडलु धारण करते यानी कि संन्यास लेते हैं। वही भगवान जो भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के जो भोक्ता हैं वो यहाँ पर आके संन्यास लेते हैं और दंड और कमंडल धारण करते हैं। केहो बोले पूर्वे रावणे बदिला, पूर्व काल में उन्होंने रावण नाम के दैत्य का वध किया था और गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश को लीला, कृष्ण अवतार में उन्होंने गोलोक धाम की जो लीला है वैभव लीला मधुर लीला आनंद लीला इसका उन्होंने प्रकाश किया है। श्री राधार भावे एवे गौर अवतार, राधा रानी का भाव लेकर गौर वर्ण धारण करके उन्होंने अवतार लिया है और क्या किया है? हरे कृष्ण नाम गौर कोरिला प्रचार, हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन का गौरांग महाप्रभु ने प्रचार किया है। वासुदेव घोष इस कविता के कवि हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो समझते हैं जो गौरांग है वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन। तो बहुत सुंदर भजन है इसलिए हमने गाया है क्योंकि हम अभी सीमांत द्वीप पर आए हैं। हरि बोल। पहले हम अंतर द्वीप में थे, कल हम गोद्रूप द्वीप में थे, अभी अंतर द्वीप गए, उसके बाद में अभी उसके बाद के सीमांत द्वीप में आए हैं। सीमांत द्वीप के इस सुंदर वातावरण में आप सबका स्वागत है। हरी बो। तो अभी एक और भजन गाएंगे बहुत सुंदर सा, श्री चैतन्य महाप्रभु को उनकी दया की याचना करते हुए बहुत सुंदर भजन उसके ऊपर है। गौरांगा तुम्हें मोरे दया न छाड़ी हो, रेडी? गौरांगा तुम्हें मोरे दया न छाड़ी हो, बोलो गोपीकांत कहाँ है? गौरंगा तुमी मोरे दया न चाड़ी हो। बजाओ ना, बैठो बजाओ, सब लोग आइए। गौरंगा तुमी मोरे दया न चाड़ी हो, तुमी मोरे दया न चाड़ी हो। अपना करिया रंगा चरण राखी हो, वासुदेव घोष इस भजन को लिखते हैं। वो कहते हैं, हे गौरांगा आप मुझ पर दया करना मत छोड़िए, मुझ पर दया करते रहिए। हे गौरांगा तुम्ही मोरे दया न छाड़ी हो, अपना कोरिया रंगा चरणे राखियो। अपना कोरिया मतलब अपना बना लो, मुझे अपना बनाकर अपने चरणों में रख लो। अपना करिया रंगा चरण राखी हो,
अपना करिया रंगा राखी हो।
कुछ लोग वहां पर बिना पेपर के बैठे हैं, आप लोग इस भाव को मिस कर रहे हैं। जिसके पास पेपर है उसके पास जाकर बैठिए और इस भजन के भाव को ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। जिस भाव से इस भजन को लिखा है उसी भाव से आप गाने का प्रयास कीजिए, मानो आपने लिखा है, आप ही पुकार रहे हो। अपना करिया रंगा चरण राखी हो, सबते आगी लू तुम्हारा चरण लागी, सबते आगी लू शीतल चरण पया शरण लोई लू, हे गौरांगा आपके चरणों की प्राप्ति करने के लिए मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है। हाँ, सब त्यागी लू, सब कुछ मैंने त्याग कर दिया है। क्यों? आपके चरण की शरण लेने के लिए। और जब मैंने आपके ये शरण पाए, शीतल चरण जो इस विश्व के तपते हुए अग्नि से बचाते हैं और शीतल कर देते हैं, वो शीतल चरण पाने से मैंने उनकी शरण ग्रहण कर ली। शीतल चरण पाया शरण लोई लू, एकुले ओकुले मुनि दिलु तिलांजली, एकुले ओकुले मुनि दिलु तिलांजली, राखी हो चरणे मोरे अपना राबोली,
राखी हो चरण मोरे अपना राबोली।
हे गौरांगा मेरे अनेक कुल हैं, यहाँ का कुल है, वहां का कुल है, माता का कुल है, पिता का कुल है, हाँ ससुर का कुल है, मेरा खुद का कुल है। ऐसे अनेक कुलों से, अनेक परिवारों से मैं जुड़ा हूँ, लेकिन आपकी प्राप्ति के लिए मैंने ये कुल और वो कुल सब पर तिलांजलि दे दी, सबको त्याग दिया है। तिलांजलि का मतलब छोड़ दिया उसको। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि आप मुझे अपने चरणों में रखेंगे और अपना बोलेंगे, आप मुझे अपना बनाएंगे, अपना बनाकर अपने चरणों में रखेंगे इसी अभिलाषा से एकुले ओकुले मुनि दिलु तिलांजलि।
एकुले ओकुले मुनि दिलु तिलांजलि, एकुले ओकुले मुनि दिलु तिलांजलि। राखी हो चरणे मोरे अपनारो बोली,
राखी हो चरणे मोरे अपनारो बोली।
गौरंगा तुमी मोरे दया न चाड़ी हो, वासुदेव घोषे बोले चरण धोरिया, वासुदेव घोषे बोले चरण धोरिया। कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया,
वासुदेव घोष इस भजन के लेखन उन्होंने कवि ये कवि है इस भजन के। वो कहते हैं कि मैंने आपके चरणों को पकड़ लिया है, अभी मुझे वहीं रखो, अपने चरणों की शीतल प्रेममयी छाया में मुझे वहीं रखो। अरे आपको लगता होगा तो हर एक स्टैंजा में तो वही बात कह रहे हैं, है ना, हर एक लाइन में वही बात है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है तो बार 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 वही बोलता है, थोड़े से पागल की तरह है? ये भगवान के भक्ति में जब व्यक्ति पागल हो जाता है और उसके रहस्य को समझता है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण और वचन है। क्या बोल रहे हैं?
कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया, चाड़ी हो,
हे गौरांगा
दया न चाड़ी हो, अपना करिया रंगा चरण लाखी हो।
पुकारो हृदय से पुकारो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
पुकारो गौरांग महाप्रभु दया करने के लिए खड़े हैं, आपकी पुकार सुन रहे हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हे दयालु
हरे राम हरे राम।
सब लोग पुकारो
राम राम।
इन सभी नौ द्वीपों पर भगवान निवास करते हैं। औरंग महाप्रभु के रूप में अवतार्य को धारण करते हुए सबको कृपा बरसाने के लिए यहाँ पर निवास करते हैं। उनकी असीम कृपा से आप यहाँ पहुंच गए हैं। अब पुकारो, निसंकोच पुकारो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमान तद्वीप धाम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमई की, श्री गौरंग महाप्रभु की जय। तो बहुत अनेक कल्पों के पहले की बात है, जब नारद मुनि वैकुंठ में चले गए और वो लक्ष्मी देवी से मिले। उन्होंने उद्धव जी से कुछ ही दिन पहले भगवान विष्णु के महाप्रसाद के गौरव के बारे में सुना था। उद्धव जी ने कहा था कि क्योंकि भगवान के महाप्रसाद का मुझे लाभ हुआ, इसलिए मैं अभी जीवित हूं और उनका भजन कर सक रहा हूं। एनीवे, बहुत लंबा संभाषण है वो उद्धव जी के और नारद मुनि के बीच में। उसका सार यह है कि उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद के बारे में गौरव करते हैं और उससे प्रेरित होकर नारद मुनि उस महाप्रसाद के लालसा से वैकुंठ पहुंचते हैं और लक्ष्मी जी से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें महाप्रसाद की अभिलाषा है। तो लक्ष्मी देवी कहती है कि विष्णु जी ने हमको बताया है कि मेरा महाप्रसाद किसी को देना नहीं। तो बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन अगली बार फिर दोबारा वहीं मिलते हैं। नारद मुनि जी, आप गए नहीं? नहीं, वही महाप्रसाद की अभिलाषा में खड़ा हूं, कुछ कीजिए, आप तो जगन माता हैं। तो वो कहते हैं कि आप रुको, लेकिन कब तक रुकना होगा मैं कह नहीं सकती, आप रुको, जब मुमकिन होगा, जब मौका लगेगा, जब अच्छा सिचुएशन होगा तो मैं कुछ अर्ज करूंगी उनके साथ। नारद मुनि ने एक साल इंतजार किया, वैकुंठ का एक साल, हाँ, पृथ्वी का नहीं, दो साल इंतजार किया, तीन साल, पांच साल, सात साल, नौ साल, दस साल, ग्यारह साल हो गए। हर बार आते हैं नारद मुनि, लक्ष्मी जी को बड़े क्या कहते हैं उसको, अपेक्षा से देखते हैं। लक्ष्मी जी बोलती है नहीं, यश नहीं प्राप्त हुआ अब तक। तो एक दिन लक्ष्मी जी अपने भक्त को इतने साल तक वेट करने के बाद भी संतुष्ट न करने सकने पर खुद नाराज हो गए बहुत, और विष्णु जी की सेवा कर रही थी। विष्णु जी ने भाव को हर लिया, कह रहे मेरी पत्नी नाराज है आज, क्या बात है? वो कहते कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं बताओ आपका मन में क्या है बताओ। वो कहते हैं कि ऐसा है कि वो आप नहीं मानेंगे, आप थोड़ा सा मान्य नहीं करेंगे उसको, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आपके भक्त नारद जी जो है वो आपके महाप्रसाद की लालायित है, बहुत साल से इंतजार में है। नहीं 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 क्यों, मैंने आपको कहा था कि मेरा महाप्रसाद किसको देना नहीं आपको। फिर भी वो कहते हैं बेचारे खड़े हैं 11 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो फिर भगवान मान जाते हैं और उनको कहते हैं आज मैं जो भोजन पाऊंगा उसका महाप्रसाद नारद मुनि को दे देना। भगवान बहुत बढ़िया भोजन करते हैं, लक्ष्मी जी के हाथ का बनाया हुआ और बचा हुआ महाप्रसाद लक्ष्मी देवी नारद मुनि को दे देती। नारद मुनि उसको प्राप्त करते ही इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, उनके कंठ गदगद होता है, उनके शरीर में रोमांच खड़े हो जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो ऐसे दोते दोते बोल बोलने लगते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं और बेहोश होते हैं, फिर होश में आते हैं, फिर गोल गोल बोलते ना कोलांटी उड़ी, क्या बोलते हैं उसको, समर सॉल्ट, ऐसे गोल 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 ऐसे गिरते हैं, उल्टे घूमते हैं, और ऐसा करते 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 वो उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, उनको कहाँ पहुंच रहे हैं। तो वो कैलाश लोक पहुंच जाते हैं, उनको पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं, इतने भाव विभोर हो रहे हैं, इतने आनंद का अनुभव कर रहे हैं, साक्षात श्री विष्णु का उच्चिष्ट उनके द्वारा चखा हुआ, उनका जिह्वा का स्वाद जिसमें है, ऐसा महाप्रसाद। तो शिवजी बैठे हैं कैलाश के नीचे, कैलाश पर्वत में एक बड़े पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं, देखते हैं अरे क्या हो रहा है, नारद मुनि ऐसे घूमते घूमते क्यों आ रहे हैं। तो नारद मुनि को पकड़ते हो, नारद नारद बताओ, क्योंकि भाई है ना उनके, वो ब्रह्मा जी के पुत्र है दोनों। नारद क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो? नारद मुनि होश में आते हैं, बोलते क्या बताऊं, 11 साल के इंतजार के बाद वैकुंठ में मुझे आखिर विष्णु का महाप्रसाद मिला, वो मैंने पाया और मेरी अवस्था हो गई। अरे नारद जी तुमने महाप्रसाद पाया, मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे लिए कुछ बचा के लेके आते। बोले क्या करूं, जब मैं पाया तो मैं होशिक हो गया, पता नहीं कहां कितना प्रसाद था, कितना मैंने खाया, देखो देखो कुछ हाथ में लगा होगा, तो उनकी मुट्ठी ऐसी थी और कुछ महाप्रसाद के कण उसमें थे, वो तुरंत शिव जी ने छीन लिए और खा लिए। और जैसे ही शिव जी ने खा लिए तो शिव जी बेभान हो गए, एकदम तांडव नृत्य करने लगे। हाँ, जब शिव जी को खुशी होती है वो तांडव नृत्य करते हैं, जब विश्व को नाश करना होता है तो भी तांडव नृत्य करते हैं। हाँ, जब नाचते हैं ना तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो हिलने लगता है उनके पद लालित्य से, पैरों के स्पर्श से और उसके आघात से, मानो प्रलय आ गया है। तो जब नाचने लगते हैं बेभान होकर तो सब ब्रह्मा से लेकर सब लोक जो है वो त्रस्त हो जाते हैं, बोले क्या हो गया, प्रलय का समय तो नहीं है अभी, क्या हो गया, वो क्यों नाच रहे हैं। तो सब लोग जो पार्वती माता है उनकी शरण लेते हैं, माता कुछ करो, आपके पति नाच रहे हैं, अकाल में ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। तो भाग भाग के देखती है तो अरे ये तो अजीब नृत्य कर रहे हैं, मैंने तो कई बार नृत्य करते हुए देखा है उनको, नटराज है स्वयं वो, लेकिन ये कुछ अजीब नृत्य है। तो पकड़ते हैं उनको जाके, स्वामी नाथ क्या हुआ? बोले क्या कहूं देवी, मैंने महाप्रसाद प्राप्त कर लिया। बोले अच्छा आपने महाप्रसाद प्राप्त कर लिया, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, अब मुझे कैसे भूल गए? बोले क्या करूं, कुछ ही कर्ण प्राप्त हुए थे, वो प्राप्त होने के बाद में मुझे क्या हुआ, मेरा ही होश नहीं रहा। तो बड़ी नाराज हो गई वो, बोले कैसे पति आप, जब कल्याण की बात होती है तो आपको बांट के बात करनी चाहिए, 50-50 होना चाहिए, आपने तो पूरा ही ले लिया। नाराज होकर चली गई। और पार्वती जी वो कहती है मैं आपके जैसे नहीं, जब मुझे कृपा की कोई वस्तु प्राप्त होती है तो मैं कभी भी वो अकेले ग्रहण नहीं करती हूं, मेरे सारे जो बालक जो जीव इस ब्रह्मांड में भगवान को भूलकर इस मरने वाले शरीर को धारण करते हुए दुख भोग रहे हैं पूरे ब्रह्मांडों के अंदर, उन सबको बांटती हूं मैं, उनका कल्याण कैसे हो उसका सोचते रहती हूं मैं, तो मैं अभी जाके तपस्या करती हूं। तो पार्वती जी इस जगह पर आई है जहां पर आप लोग बैठे हैं, सीमांत द्वीप है, यहां पर आकर पार्वती ने सभी विश्व के बद्ध जीवों के कल्याण के लिए तपस्या की है। और जब उन्होंने तपस्या की तो साक्षात गौरांग महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया यहां पर। महाप्रभु गौरांग प्रकट हुए, उनके अवतार का काल नहीं हुआ था, तो बहुत पहले की बात है। और तब जब महाप्रभु जी और गौरांग प्रकट हो गए तो उनके चरणों की जो धूल है वो पार्वती जी ने अपने मांग में भर दिया, उसको कहते हैं सीमांत, सीमांत यानी मांग, उसमें उन्होंने महाप्रभु जी गौरांग की चरणों की धूल आके भर ली, इसलिए इस द्वीप का नाम पड़ा सीमांत द्वीप। और तब महाप्रभु चैतन्य ने उनको वरदान दिया कि जब मैं कलयुग में अवतार लूंगा तो मेरा प्रसाद जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में मैं सब लोगों को बांटूंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहो, आपकी जो महाप्रसाद खुद लेने की और सबको बांटने की अभिलाषा है वो मैं इस प्रकार से दिव्य रूप में सबको महाप्रसाद बांटूंगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? भगवान कृष्ण का विष्णु का महाप्रसाद है, इसको सबको ग्रहण करना चाहिए, इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो ये सीमांत द्वीप का इतिहास है। और नवदा भक्ति के अनुसार ये सीमांत द्वीप जो है वो कीर्तनम का प्रतिनिधित्व करता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जो नवदा भक्ति है उसमें कीर्तन का प्रभाव इस द्वीप में माना गया है। और जैसे मैंने कहा कि जगन्नाथपुरी, वृंदावन धाम और मायापुर धाम और जितने वन है सभी सब नवद्वीप में आश्रय ले चुके हैं, तो श्री जगन्नाथपुरी जो है वो यहाँ पर विराजमान है। ये नवद्वीप धाम का जगन्नाथपुरी है, इसमें जगन्नाथ भगवान 7th century वहाँ पर जगन्नाथपुरी में एक राक्षस आया, वो राजा के रूप में था लेकिन बहुत भयंकर राक्षस था, वो नाम था रक्तबाहु। तो रक्तबाहु ने बहुत आतंक मचा दिया, सब भक्तों को कष्ट देना आरंभ किया, मंदिरों को तोड़ना आरंभ किया, धर्म के विरुद्ध काम शुरू किया, सबको डर लगा उसका, उसकी खबर पहुंची तो जगन्नाथ जी के जो पुजारी हैं वो सब डर गए, वो अभी आ रहा है और जगन्नाथ के मंदिर को भी तोड़वा देगा। तो सब लोग अभी, जब भक्त लोग असहाय होते हैं तो क्या करते हैं, शस्त्र शास्त्र इकट्ठा करते हैं, गवर्नमेंट को साथ में लाते हैं, है ना? नहीं सर, जब भक्त लोग कष्ट पाते हैं तो वो किसी का सहारा लेते नहीं है, केवल एक सहारा लेते हैं, वो भगवान का। हम लोग क्या करते हैं, कष्ट आने पर पैसे का सहारा लेते हैं, रिश्तेदारों का सहारा लेते हैं, प्रॉपर्टी का सहारा लेने का कोशिश करते हैं, हमारे पास जो रिसोर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको टैप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन समय के प्रभाव से सभी सहारे डूबते हुए नजर आते हैं, है कि नहीं? कोई ऐसा सहारा नहीं है जो परमानेंट सहारा दिला सके, सब सहारे टेम्पररी है और निश्चित ही समय के साथ में नष्ट होने वाले हैं। इसलिए क्या कहा भगवान ने, आदि अंतु अंतु कौंतेय नतेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान जीव हैं, जो इस जीवन के सत्य को जानते हैं, वो कभी भी नश्वर वस्तु पर विश्वास नहीं रखते हैं और नश्वर वस्तु का सहारा भी लेते नहीं है। सहारा लिया था जिस जिस का हमने, वो सब डूबते रहे भंवर में बिचारे, काल के भंवर में सब सहारे डूबते हुए नजर आते हैं। इसलिए ये सबको देखते हुए, जानते हुए, अनुभूति करते हुए हमें केवल वही सहारा लेना चाहिए जो समय के साथ नहीं डूबता है, जो समय को लांग कर हमको बचाता है। समय के प्रभाव से आज तक कोई बचा नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा देवता नहीं है जो समय के पावर को तार सके। अरे ब्रह्मा जी को पूछा गया ना हिरण्यकश्यप द्वारा कि मुझे अमर कर दो, मतलब क्या, समय के प्रभाव के बाहर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा सॉरी, मैं भी समय के प्रभाव में हूं, मेरी भी जन्म की तिथि है और मेरे भी अंत की तिथि निश्चित है, आपके सामने बहुत लंबी है लेकिन उसकी भी अंत होने वाली है, आयु कितनी भी लंबी होगी फिर भी उसका अंत होता ही है, इसलिए भगवान का सहारा लो, इसी जन्म में लो और समय बर्बाद मत करो। कई लोग यहाँ पर बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, कई लोग जवान हैं, कई स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, समय बीतता जा रहा है, समय बीतने के पहले, बुद्धि और नाश होने के पहले, बुद्धि और मति मंद होने के पहले ही भगवान का सहारा लो और समय बर्बाद मत करो, कि समय बहुत कीमती है, मनुष्य जीवन का बीतते जा रहा है, किसी के लिए रुकता नहीं है। तो जगन्नाथ के भक्तों ने जगन्नाथ की शरण ली और रो रो कर प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, हे मालिक, कृपा करो, अभी आपकी रक्षा आप ही खुद करो, हम तो बिल्कुल असहाय है इस रक्त बाहु के सामने, हम प्रार्थना करने आए कि वो आ रहा है, हमें बचाइए। तो जगन्नाथ जी पुजारी से बोले, आपको लगता होगा अरे कैसे बोले, ऐसा है कि जब भगवान के विग्रहों की सेवा करते हुए भक्त शुद्ध बन जाता है, निरपेक्ष बन जाता है, हाँ सब भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाता है, उसके अंदर भक्ति पैदा होती है। तो विग्रह उनसे बोलते हैं, प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। जो भक्त शुद्ध हो जाता है, इसकी जिसकी मति या जिसकी चेतना पवित्र हो गई है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर चुका है, ऐसे व्यक्ति के लिए वो पत्थर की और मूर्ति नहीं है और चित्रपट नहीं है, वो साक्षात भगवान है, संवाद कर सकते हैं। हमारे गोसाई जी, रूप गोस्वामी, सनातन जी, जीव गोस्वामी, सभी अपने विग्रहों से बातें करते थे। आम बात है ये, कहले हम अपवित्र हैं और बद्ध हैं इसलिए हमारे लिए ऐसा अनुभव नहीं होता है, लेकिन अगर आप जानते भी हो थ्योरेटिकली कि ये पत्थर नहीं है, ये भगवान है, तो आपको अलग अलग नजर आएंगे वो रोज। राधा माधव जी अलग दिखेंगे आपको रोज, अलग अलग आपसे भाव व्यक्त करेंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं काल के परे हूं, मुझे कोई संकट नहीं पहुंचा सकता है। आप मेरे भक्त हो इसलिए प्रेम के प्रति आपको चिंता हो रही है, निश्चिंत रहो, मुझे तुरंत यहां से निकालने की व्यवस्था करो। और मेरे जो शबर भक्त हैं, शबर नाम के भक्त मतलब वो ब्राह्मण नहीं होते, वो शूद्र कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी की ऐसी विशेषता है कि वो शबरों से अपनी सेवा लेते हैं। तो जब भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव होने की संभावना होती है, प्लानिंग होता है, तो शबरों को बुला जाता है और रथ यात्रा में उनको लेने जाने का आने का काम जो है वो शबर लोग करते हैं। तो शबरों को बुलाओ और उनके द्वारा मुझे यहां से दूर ले जाने का प्लानिंग करो। तुरंत रातों रात उन्होंने बताया कि मेन रोड से मत जाना, जंगल के रास्ते से निकलना। निकलते निकलते गए, निकलते गए तो यहां पर आकर पहुंचे, और यहां से भी निकलने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी यहीं रुकूंगा, यही मेरा चिरंतन निवास स्थान है, यही नवद्वीप का जगन्नाथपुरी है, तो मैं यहीं निवास करूंगा। तो शबरों की सेवा में यहां पर भगवान विराजमान हो गए। तो यहां पर एक थोड़ा आगे इलाका है, इसका नाम है शबर डांगा। वो क्या था, खोला भंगर डांगा, और ये शबर डांगा शबरों का शबरपुर कह सकते हैं आप। तो वहां पर कई पुश्तों तक शबरों ने भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा की। कुछ साल बाद जगन्नाथ जी यहां से लुप्त होकर फिर जगन्नाथपुरी चले गए। यह हो गई 7वीं सदी की कहानी। अभी 17वीं सदी के अंदर क्या हुआ, नहीं 16वीं सदी के अंदर, 16th century, यहां पर जगदीश गांगुली नाम का एक भक्त था। वो बहुत ही श्रेष्ठ वैष्णव था, उसका नाम था जगदीश गांगुली, और वो हर साल, ये उस समय की बात है जब चैतन्य महाप्रभु इस विश्व में थे। बाय द वे, चैतन्य महाप्रभु का जन्म मैंने बताया 1486 में हुआ था, उस साल में 18 फरवरी तारीख थी। बाय द वे, फाल्गुन पूर्णिमा 18 फरवरी की तारीख थी, और चैतन्य महाप्रभु इस विश्व में उन्होंने 48 साल तक लीला किया, मतलब 1534 तक वो इस विश्व में रहे, 24 साल नवद्वीप, 6 साल भ्रमण में, और अगले 18 साल जगन्नाथपुरी में। तो ये लास्ट जो 18 साल है, मतलब कब से कब तक बताइए, 26 से नहीं 16 से, हाँ 1516 से 1534 तक। तो इस काल में जगदीश गांगुली थे, और वो हर रोज हर साल यहां से नवद्वीप से चलकर 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा में पहुंचते थे। बड़े शुद्ध भक्त थे वो, रथ यात्रा करके लौट के आते थे। एक दिन जगन्नाथ जी, एक दिन जगदीश गांगुली को निकलने का समय आ गया था रथ यात्रा के लिए, तो एकदम अचानक रोग हो गया उनको, कुछ अनजान रोग की वजह से एकदम अंधे हो गए वो। कभी कभी ऐसे होता है, मेडिकल ऐसे डिसीज होते हैं इसमें अंधत्व आता है, तो अंधे हो गए। तो लोगों ने कहा अरे ऐसे अंधी अवस्था में आपको 900 किलोमीटर पैदल चल के जाना जंगल में, धूप छांव में, आंधी तूफान में, तो कैसे हो सकता है। तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि आप नहीं आओ हमारे साथ। तो बड़ा दुख हुआ उसको कि मेरे रोग की वजह से मैं जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। तो यहीं रोते रोते बैठ गए। उस समय जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि जब आप कल सवेरे नदी में स्नान करने जाओगे, किसी को लेकर जाना, अंधे हो आप, तो आपके सर पे एक बड़ा लकड़े का जो क्या कहते हैं उसको, क्या लॉग, हाँ मतलब बड़ा टुकड़ा लकड़े का जो है वो आपको सर को स्पर्श करेगा तो आपकी दृष्टि वापस आएगी। आप फिर आप उस लकड़े को दृष्टि आने के बाद में किनारे पर लाकर उसको मूर्ति बनवाना मेरी, जगन्नाथ स्वयं बोल रहे हैं, और ऐसे मूर्तिकार को ढूंढना जिसको खुद को कुष्ठ रोग हो गया है, वो आपको मना करेगा, लेकिन उसको बनाना आप और उसको वादा करना कि जब तुम इस मूर्ति को बनाओगे तुम्हारा कुष्ठ रोग नष्ट हो जाएगा। तुरंत सपने में से जग गए, वो नदी की ओर भागे, नदी में उतरते ही उनके सर पे लकड़ी का बड़ा जो लॉक है वो लग गया, उसका स्पर्श होते ही उसकी दृष्टि तुरंत वापस आ गई। तुरंत उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालकर वो सारे नवद्वीप ढूंढने लगे कि ऐसा कोई मूर्तिकार है, तो बहुत ढूंढने के बाद में उसको ऐसा मूर्तिकार मिला जो उसको कुष्ठ रोग हुआ था। कई प्रकार के कुष्ठ रोग होते हैं, एक भयंकर होता है उसको कहते हैं लेप्रोमाटस लेप्रसी, उसके अंदर नाक झड़ता है, उंगलियां झड़ जाती है, ऐसे बहुत सारे। तो ऐसी लेप्रसी उसको थी, उसके हाथों के जो ये स्टंप्स है ना ये पूरे टूट गए थे, उसमें पस ब्लड सब भरा हुआ था। तो कहते हैं कि मैं तो इस मूर्ति बनाने के योग्य नहीं हूं, मैं बहुत अपवित्र अवस्था में हूं, खून और पीप से मेरा शरीर पूरा लिप्त हो गया है, तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो बहुत अच्छा शुद्ध आदमी जो है उसको हाथ से करना चाहिए। तो उन्होंने उनको बहुत बनाया, बहुत गिड़ाए और बाद में वादा किया कि आप देखो आप जब मूर्ति बनाओगे तो आपके कुष्ठ रोग नष्ट हो जाएगा। फिर मान गया वो, कई दिन तक बहुत पीड़ा से, जैसे क्योंकि वो हथौड़ा और लकड़ी और वो खिला लेकर उसको मारना तोड़ना, तो उसके हाथ से बहुत खून और बस इतना पीड़ा में उसने बहुत दर्द को सहन करते करते उसने मूर्ति बनवाई। जैसे ही जगन्नाथ जी की एक विग्रह पूरा हो गया वो पूर्णता से अच्छा हो गया, उसकी टूटी हुई उंगलियां वापस आ गई, हाथ पांव सब ठीक हो गए, नाक वो झड़े हुए थे सब ठीक हो गए, एकदम तंदुरुस्त हो गया वो। फिर जगदीश गांगुली ने उस मूर्ति को यहाँ पर स्थापन किया, और स्थापन करने के बाद दोबारा एक बार स्वप्न दिया भगवान ने और कहा कि अभी नीम की लकड़ी इसी जंगल से आप तोड़ो और फिर उसी मूर्तिकार के पास जाओ और बलदेव मेरे भैया और मेरी बहन सुभद्रा जी की मूर्ति भी बनाओ। तो उसी व्यक्ति ने फिर लकड़ी से जगन्नाथ जी के भाई बलदेव जी और सुभद्रा जी की मूर्ति भी बनवाई और वो तीनों मूर्तियां आपके सामने विराजमान है। संदेश आया है कि आप लोगों ने दर्शन नहीं किया है, दर्शन 1 बजे बंद होने वाला है, इसलिए कथा को विराम देके 1 बजे के पहले सबको यहाँ से भगवाना है, ऐसे मैसेज आया है। तो जरूर आपको, अभी 12:40 हो गए, 10-12 मिनट के बाद में आपको यहाँ से मुक्त करेंगे, फिर आप वहां पर दर्शन करना। इस तरह से जगन्नाथ जी यहाँ पर विराजमान हो गए और उनकी कई लीलाएं हैं। जगदीश गांगुली के परिवार ने कई पुश्तों तक सेवा किया जगन्नाथ भगवान का, शबरों के साथ मिलकर। और कुछ साल के बाद में जगदीश जब देहांत हो गया उनका, तो उनके परिवार द्वारा कुछ जगन्नाथ की सेवा में अपराध हो गए, तो उस समय एक पुजारी से भगवान ने बात किया कि अभी आप सब लोग नष्ट हो जाओगे, कल तक आप मुझे अगर यहां से नहीं निकालोगे तो सारे लोग मर जाएंगे। तो उस परिवार के सब लोग मर गए और गांव जो है पूरा ये ऐसा होता ना, क्या बोलते हैं उसको, अबेंडेंट ओसाड़ बोलते मराठी में उसको, पूरा सब गांव छोड़ के चले गए और जगन्नाथ जी जंगल में रह गए। जगन्नाथ जी के ऊपर चीटियों का घर बना पूरा। और कई साल के बाद में जैमिनी घोष, यानी कि उस समय से लेकर कई साल तक, कई सेंचुरी निकल गई, और गांगुली फैमिली के जो वंशज हैं उनके यहाँ होने पर एक बार 1958 में, मतलब अभी अभी की बात है ना, ये काफी जल्दी समय की बात है, जैमिनी घोष नाम के व्यक्ति यहाँ पर थे, उनको किसी ने बताया कि यहाँ पर जंगल में से आवाज आती है, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे भोजन क्यों नहीं कराते, बहुत डर लगता है, क्योंकि हिंदू लोग सब भाग गए थे यहाँ से, मुसलमानों का राज था, तो मुसलमान लोग आके उनको बताने लगे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, हमको डर लग रहा है, नहीं नहीं हम लोग नहीं आएंगे वहां पर। मैंने कहा कि मैं वादा करता हूँ मुसलमान जरूर हूँ, लेकिन मैं आपको पूरी सुरक्षा दूंगा, पूरा सिक्योरिटी दूंगा और आपको उसका रहस्य ढूंढ के निकालना है। तो जैमिनी घोष वहां पहुंचे और उन्होंने इस जगह के मालिक जो थे फटिक चटर्जी से संपर्क किया और उनके जगह में प्रवेश किया, तो वैसे ही उनको आवाज आई, तो समझ गए इसके इतिहास के अनुसार, क्योंकि उनको पता था पूरा इतिहास क्या है, पूरा जगन्नाथ जी पुकार रहे हैं। तो उन सब लोगों की सहायता से पूरा वो चीटियों का घर जो है पूरा निकाल दिया। और बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि इतने सैकड़ों साल बीतने के बाद भी जगन्नाथ जी का विग्रह वैसे के वैसे ही था, उसको रिक्त किया गया, मुक्त किया गया वहां से चीटियों के घर से, और दोबारा उसकी प्रार्थना पूजा अर्चा शुरू किया गया, नया मंदिर बनाया गया। और फटिक चटर्जी के परिवार के लोग यहां पर सेवा कर रहे थे। तो 1979 पर ऐसा स्थिति आ गई कि फटिक चटर्जी का जो परिवार है उनसे ये सेवा होना मुश्किल हो गया, उनके लिए फाइनेंशियली और उसको साधन जुड़ने में बहुत कठिनाई हो गई। तो उन्होंने 1979 में क्या किया होगा, कुछ सोच सकते हैं? फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, मंदिर चलाना मुश्किल हो गया है, सेवा करने में साधन सामग्री जोड़ने में कष्ट हो रहा है। उन्होंने इस्कॉन के भक्तों को बुलाकर इस मंदिर को इस्कॉन के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि 1969 में प्रभुपाद जी यहां से अमेरिका गए और फिर भक्त बनाकर सबको लेकर यहां पर आए। एक सुंदर मंदिर उन्होंने अपने ही खर्चे से, अपने ही मेहनत से वृंदावन में बनाया और मायापुर को इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स बनाया, वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स। तो मायापुर का मंदिर जो आज हम देख रहे हैं, राधा माधव जी विराजमान है, उसके बाद में फिर पंचतत्व आए वो विराजमान हो गए, बहुत सारे फार्म हाउसेस, गुरुकुल सब बने, तो बहुत बढ़िया सेवा होने लगी वहां पर। तो फटिक चटर्जी को इस्कॉन के भक्तों पर बड़ा विश्वास था वहां की सेवा का स्टैंडर्ड देखते हुए। तो उनको उन्होंने विनती की और फिर 1979 में जय पताका महाराज, जो आज भी इस्कॉन के प्रमुख आचार्यों में से एक हैं और मायापुर के खास करके उनका यहाँ पर काफी प्रचार है, वो जन्म से अमेरिकन हैं लेकिन वो एकदम फ्लुएंट बंगाली बोलते हैं। उन्होंने न केवल फ्लुएंट बंगाली बोलते हैं, बंगाली लिखते भी हैं, उन्होंने बंगाली में कई किताबें लिखी हैं और श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का बंगाली में अनुवाद भी किया है। और ये नवद्वीप धाम के जो हजारों गांव हैं उसके अंदर उनके हजारों शिष्य हैं जो बंगाली बोलते हैं, हाँ उनके कम से कम 30,000 शिष्य हैं इन गांवों के अंदर, सबके साथ में वो बंगाली बोलते हैं, उनको प्रचार करते हैं। अभी उनको पैरालिसिस हो गया है इसलिए बहुत ज़रा कमज़ोर हो गए, हमारे हॉस्पिटल में भी आए थे। तो जय पताका महाराज के नेतृत्व में इस मंदिर को अपने हाथ में लिया गया और तब से ये मंदिर इस्कॉन के अधिकार में है। कई चमत्कार हैं इस मंदिर के, समय को देखते हुए मैं संक्षेप में बोलूंगा। ये जगन्नाथ के विग्रह जो हैं बहुत जागृत विग्रह हैं, हाँ आपके अंदर भाव है तो आपको भी इनका रिस्पांस मिलेगा। जब मंदिर बन रहा था दोबारा इस्कॉन के अंदर आने के बाद में, तो यहाँ पर एकदम पूरा भोग लगाना शुरू नहीं किया गया था, तो पूरा एग्रीमेंट वगैरह भी हुआ नहीं था, वो एक प्रोसेस था। लेकिन जगन्नाथ सब जानते हैं ना कि अभी इस्कॉन के पास जाने वाला है, तो उन्होंने पुजारी से एक बार स्वप्न दिया और बताया कि यहाँ पर मुझे कुछ भोजन बराबर मिलता नहीं है, मैं भूखा हूँ बहुत। तो वो कह रहे हैं अभी हो रहा है अरेंजमेंट, थोड़ा रुको। अगले दिन जगन्नाथ जी का मंदिर खोला, जगन्नाथ जी मंदिर से गायब थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सब भक्त लोग परेशान हो गए कहाँ गए। तो उनको खेत में मिले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। फिर अगले दिन स्वप्न आया, बोले कि आप लोग यहाँ पर अच्छा खिलाते नहीं है, वो इस्कॉन के अंदर बहुत अच्छा अच्छा भोग लगाते हैं, इसलिए हम लोग वहां जा रहे थे। तो जयपताका महाराज को ये खबर पता चली तो उन्होंने कहा कि हाँ ये एग्रीमेंट के लिए वेट मत करो, तुरंत 56 भोग लगाना शुरू कर दो, तो जगन्नाथ जी वही रहेंगे। तो फिर दोबारा मंदिर मूर्तियों को उठाकर मंदिर में रखा गया और 56 भोग लगाना आरंभ कर दिया। ये उस समय का इतिहास है, क्योंकि जयपताका महाराज ने कहा कि मैंने तो थोड़ा सा रुका था मैं कि लीगल कुछ फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए फिर अपना सेवा आरंभ करेंगे, लेकिन भगवान जगन्नाथ का रोल जो है वो लीगल फॉर्मेलिटी के अंदर छुपता नहीं है कभी भी। उसके बाद में जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो एक मुसलमान कारीगर था, वो रोज एक मार्बल टाइल चोरी करके अपने घर लेके जाता। सब कुछ होता है प्रभु, क्या करें, दुनिया में सब प्रकार के लोग होते हैं। हम लोग अपना मंदिर की सेवा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं और लोग अपने अपनी जेब भरते जाते हैं, हाँ सब कुछ करते हैं, अफरा तफर करते हैं, सब करते हैं। तो ये रोज अपने अपने साइकिल से एक टाइल लेके जमा करता था घर पे। तो एक दिन रात में जगन्नाथ उसके स्वप्न में आए, उस जगन्नाथ स्वप्न में आने के बाद भैया को आदेश दिया, भैया धुलाई करो इसकी। बोले मेरे मंदिर का बनाया और मेरे मंदिर के लिए जो लाया गया है माल हो तुम लूट रहे हो। तो बलदेव भैया ने उसको बहुत पीटा, बहुत पीटा, इतना पीटा कि उसका मुंह वो सूज गया, लौटा दो पूरा सामान। तो अगले दिन ये आदमी रोज साइकिल पे आता था, उस दिन वो ट्रैक्टर लेके आया और पूरा टाइल भर के तो घर पे लेके गया था, वो पूरा मंदिर में जमा कर दिया। बोले भाई माफ करो मैंने गलती किया जगन्नाथ जी महाराज, तो सब लौटा दिया। उसके अगली बार एक बार क्या हुआ कि एक लड़की और एक परिवार यहाँ पर देखने आए थे मंदिर को, भगवान को। तो देखा कि जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा जी बड़े अच्छे अच्छे ब्रेसलेट पहने हुए हैं सुंदर सुंदर। तो उस छोटे से बच्चे को बहुत मोह हो गया, उसने ऐसा सुभद्रा जी सॉरी बलदेव जी के हाथ से निकालने के लिए ऐसे हाथ आगे किया अपना से निकालने के लिए, तो जगन्नाथ जी ने एक तमाचा मार दिया खड़ाड़ करके इसके मुंह पे, एकदम गिर गए नीचे। वो बोले माता माता देखो ये भैया ने मुझे मारा। तो बड़े प्रेम से उसे दिखाया, जो गाले काल पर जगन्नाथ जी बलदेव जी के हाथ के निशान थे। बोले बड़ी दयाल बड़ी कृपा है आपके ऊपर, बलदेव जी का कृपा मिल गया आपको। ऐसे कई चटपटी कहानियां, ये किताब आपको मायापुर के बुक स्टॉल में मिल सकती है। हाँ, इसमें अनंत कहानियां, कितनी बताएंगे आपको 5 मिनट के अंदर। लॉर्ड जगन्नाथ इन राजापुर, इधर भी मिलेगी आपको किताब, ये आप ले सकते हैं। बहुत सुंदर किताब है, इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं, कैसे कैसे जगन्नाथ जी, ये अभी अभी की कहानियां, ऐसा नहीं कि मैं बहुत इतिहास की और 7th सेंचुरी की कहानी बता रहा हूं, ये इस्कॉन के ग्रहण करने के बाद की चमत्कारिक कहानियां हैं। फिर उन्होंने एक यहाँ पर हमारे बड़े फेमस भक्त हैं, इनका नाम है जननिवास प्रभु और पंकजांगरी प्रभु, ये अपने उम्र के कुछ 17-18 साल के अंदर भक्त बने, दोनों जुड़वा भाई हैं, आपको मंदिर में दिखाई देंगे सुबह कभी कभी, अभी वो 60 साल के ऊपर उनकी उम्र हो गई है। तो 35 साल उन्होंने यहाँ पर निवास किया है, यहां से बाहर ही नहीं गए, वो दिन रात राधा माधव की सेवा कर रहे। तब तो अष्ट सखियां भी नहीं थी, केवल राधा माधव थे, तब से वो सेवा कर रहे हैं। फिर अष्ट सखियां आई, उनका स्थापना हुआ, फिर पंचतत्व आए, उनकी स्थापना हुई, लेकिन 30-35 साल बिना यहां से निकलते हुए, 30 साल कम से कम तो यहां निकले ही नहीं, वो पिछले 5 साल में बाहर निकले हैं, यहां वहां मुंबई आए हैं, वृंदावन गए हैं। तो जननिवास प्रभु और पंकजांगरी प्रभु के जानकारी में ये सब कहानियां आई, भक्तों को जो अनुभव हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सब भक्त अनुभव जो है ये संकलित करना चाहिए और सब कुछ इकट्ठा करके किताब के रूप में सब जनता के लिए प्रकाशित होना चाहिए, तब जाकर ये किताब बनी और हमको सबको इसका लाभ हुआ। हमारा ये भाग्य रहा कि हमारे गुरुदेव सीमांत द्वीप में कई बार यात्रा लेकर आए हैं, तो इस जंगल में अभी हम लोग 200 लोग बैठे हैं, इसमें 5000 लोग बैठे थे एक समय पे, हमारे गुरुदेव जननिवास प्रभु पंकजांगरी प्रभु और सारे सन्यासी लोग बैठे थे, और ये जगन्नाथ जी के चमत्कारिक कहानियों के बारे में पूरा 2 घंटा उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया था, इसी जंगल में बैठते दोपहर के समय। तो आप इस किताब के रूप में उसको पढ़ सकते हैं। अभी अधिक ज्यादा न बोलते हुए आप सब लोगों में रिहा करता हूँ, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के पश्चात भोजन होगा और भोजन के बाद में फिर कथा होगी, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, सीमांत द्वीप धाम की, हरे कृष्णा।